एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद आज के दौर की एक बड़ी जरूरत को छूती है। मार्था बेक की द वे ऑफ इंटेग्रिटी। ये इस बारे में है कि कैसे अपनी अंदरूनी सच्चाई और बाहरी जिंदगी के बीच आप कह सकते हैं एक पुल बनाकर हम ज्यादा सुकून और मकसद भरी जिंदगी जी सकते हैं।
बिल्कुल, और ये सुकून और मकसद आजकल ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है ना। चारों तरफ भाग दौड़, तनाव, बर्नआउट। कई बार तो लगता है जैसे हम बस बस ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, बिना ये जाने कि हम असली में चाहते क्या हैं। तो ये किताब एक आईना दिखाती है कि शायद हमारी बहुत सी परेशानियां वो इसलिए हैं क्योंकि हम खुद से ही दूर हो गए हैं। एकदम सही कहा। तो आज हम इसी किताब के गहरे पानी में उतरेंगे, देखेंगे कि मार्था बेक क्या कह रही हैं, उनके अपने अनुभव क्या रहे हैं, और सबसे जरूरी कि इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हमने इसके लिए किताब के कुछ अच्छे सारांशों को खंगाला है।
हाँ, तो शुरुआत करते हैं लेखिका से ही। मार्था बेक ये कोई आम लाइफ कोच नहीं है। जैसा आपने कहा, उनके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में 3 डिग्रियां हैं, पीएचडी समेत।
हाँ,
सोचिए जरा, अकादमिक दुनिया की इतनी ऊंची पढ़ाई और साथ में गहरी सहज बुद्धि, मतलब इंट्यूशन, ये मेल बहुत कम देखने को मिलता है।
हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती भी है। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करती, उन्होंने खुद बड़े, आप कह सकती हैं, कठिन रास्ते चुने हैं। सोचिए हार्वर्ड का वो शानदार करियर छोड़ देना, जिस मॉर्मन चर्च समुदाय में वो पली बढ़ी उसे छोड़ देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनकी अंदरूनी सच्चाई से मेल नहीं खाता।
हिम्मत चाहिए इसके लिए।
बिल्कुल, ये हिम्मत की बात है। तो ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये उनके अपने जीवन की निचोड़ और सालों के कोचिंग अनुभव का नतीजा है।
और फिर ओपरा विन्फ्री ने जब उन्हें अपने शो पे बुलाया, उसके बाद तो उनके विचार दुनिया भर में फैल गए। उनका अंदाज भी बड़ा दिलचस्प है, उनमें गहरी सहानुभूति है, मतलब एम्पैथी, लेकिन वो सीधी बात करती हैं, प्रैक्टिकल सलाह देती हैं, मुश्किल मनोवैज्ञानिक चीजों को भी बड़े सरल तरीके से समझा देती हैं।
चलिए अब किताब पर आते हैं। द वे ऑफ इंटेग्रिटी, ये शब्द इंटेग्रिटी, अखंडता, सुनते हैं हमारे दिमाग में शायद ईमानदारी, नैतिक नियम, ये सब आता है ना।
हाँ, अक्सर यही मतलब समझा जाता है।
पर बेक इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हैं। उनके लिए इंटेग्रिटी का मतलब है एक होना। जब आपका अंदर का सच और बाहर का जीवन वो एक सीध में हो, कोई टकराव नहीं, कोई मुखौटा नहीं। क्या कहते हो, ये परिभाषा ही अपने आप में मतलब सोचने वाली नहीं?
बिल्कुल, ये नैतिकता से ज्यादा समग्रता, मतलब होलनेस की बात है। और किताब का मूल तर्क यही है कि हम इंसानों के ज्यादातर दुख, चिंता, डिप्रेशन, खालीपन, ये सब इसी अंदरूनी बिखराव या अखंडता की कमी से पैदा होते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार हमें कुछ और बनने को कहती है, वो बनने को जो हम असल में नहीं हैं। तो सवाल यह है कि इस दबाव के बीच सच्ची खुशी और मकसद कैसे मिलेगा? ये किताब इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है।
और इसका जवाब एक सफर के रूप में दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। बेक ने दांते की मशहूर कविता डिवाइन कॉमेडी का ढांचा इस्तेमाल किया है, जैसे दांते नरक, शुद्धि लोक और फिर स्वर्ग से गुजरते हैं।
हाँ हाँ, वो वाला रूपक।
बिल्कुल, वैसे ही ये किताब हमें आत्म खोज की एक चार चरणों वाली यात्रा पर ले जाती है। और ये झूठ को पहचानने, डर का सामना करने और फिर छोटे छोटे लगातार कदमों से अपनी सच्ची जिंदगी जीने का एक तरह से नक्शा है।
हाँ, और ये यात्रा थोड़ी डरावनी भी लग सकती है शुरू में, क्योंकि पहला पड़ाव ही नरक से गुजरने जैसा है।
लेकिन जैसा बेग कहती हैं, ये जरूरी है। तो चलें इस यात्रा के पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखें।
ये किताब का दिल है असल में।
जरूर, यात्रा शुरू होती है भाग वन, द डार्क वुड ऑफ एरर, त्रुटि का अंधेरा जंगल। ये वो दौर है जब हम खोए हुए, दुखी और भ्रमित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी सच्चाई से दूर जा चुकी होती है।
हाँ, वो कन्फ्यूजन वाला फेज।
वही, यहाँ की मुख्य चीज है असंगति, इनकंग्रुएंस, यानी हमारी असली प्रकृति और हमारे कामों के बीच का फासला। और बेग कहती हैं कि इस फासले का सबसे बड़ा गवाह वो हमारा शरीर है।
ये बात बहुत दिलचस्प है कि हमारा शरीर झूठ नहीं बोलता। वो जो लगातार का सिरदर्द है या पेट की गड़बड़ या बेहोशी की थकान. बेक कहती हैं कि ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती हैं, ये संकेत हैं कि आप अपनी सच्चाई से कहीं भटक गए हैं. दिमाग तो हमें हजार बहाने बता सकता है, पर शरीर वो सच कह रहा है.
और यही वो एक प्रैक्टिकल टूल देती हैं, इंटेग्रिटी क्लेंस. सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर है बड़ा सीधा. बस दिन भर ध्यान देना है कि कब आपको अंदर से शांति सुकून महसूस होता है और कब तनाव, खिंचाव या बेचैनी.
अच्छा.
ये आपकी निजी कंपस बन जाती है जो बताती है कि आप अपनी सच्चाई के कितने करीब या दूर है.
अच्छा, तो ये कंपस लेकर हम आगे बढ़ते हैं भाग दो, दी इन्फर्नो, नरक की तरफ. बैकसाफ कहती हैं कि ये कोई बाहरी सजा नहीं है, ये वो अंदरूनी पीड़ा है जो हम खुद अपनी सच्चाई को नकार कर पैदा करते हैं. और इससे भागना नहीं है, इसे समझना है. इसके चार द्वार हैं जिनसे हमें गुजरना होता है.
चार द्वार, ठीक है.
पहला द्वार है जानने योग्य अज्ञात, इनकार का नरक,
डिनायल.
ये उन सच्चाइयों के बारे में है जिन्हें हम जानते तो हैं अंदर ही अंदर, पर मानना नहीं चाहते. जैसे मुझे ये नौकरी पसंद नहीं, या ये रिश्ता मुझे तोड़ रहा है. हम इन्हें बस कालीन के नीचे छिपाते रहते हैं.
हाँ, ये तो बहुत होता है.
वे कहती हैं धीरे धीरे बस अपने लिए ही सही इन्हें स्वीकार करना शुरू करें, चाहे तो सिर्फ लिखकर ही सही. बस मान लें कि हाँ, ये सच है.
हाँ, ये इनकार बहुत आम है. और फिर आता है दूसरा द्वार, असहनीय भावनाएं, भावनात्मक बचाव का नरक, इमोशनल अवॉइडेंस, गुस्सा, दुख, डर. हम इन भावनाओं से भागते हैं, उन्हें दबाते हैं. लगता है कि महसूस करेंगे तो टूट जाएंगे.
डर लगता है उनसे.
बिल्कुल. लेकिन बेक का तर्क है कि ये अनफेल्ट भावनाएं, मतलब जो महसूस नहीं की गई, वो शरीर में जहर की तरह जमा होती हैं और बाद में किसी बड़ी बीमारी या दर्द का रूप ले लेती हैं. समाधान, थोड़ा रुककर इन भावनाओं के साथ बैठना सीखना, उन्हें महसूस होने देना.
ये मुश्किल लगता है, लेकिन भावनाओं के साथ बैठना, हम तो तुरंत ध्यान बटाने लगते हैं, फोन उठा लेते हैं या कुछ और करने लगते हैं.
बिल्कुल. और उतना ही मुश्किल है तीसरा द्वार, अकथनीय सत्य, मौन का नरक, साइलेंस. ये वो सच है जो हम दूसरों को बताने से डरते हैं, अपनी जरूरतें, अपनी सीमाएं, मतलब बाउंड्रीज. डर लगता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो लोग क्या कहेंगे वाला डर.
हाँ, ये तो बहुत बड़ा है हमारे समाज में,
बहुत ज्यादा. बेक यहाँ सत्य का वर्ष का सुझाव देती है, मतलब छोटे छोटे कम रिस्क वाले सच बोलने का अभ्यास करना. जैसे अगर कोई पूछे मूवी कैसी लगी और आपको बकवास लगी हो, तो सच कहना सीखें. यहीं से शुरुआत होती है.
अच्छा, छोटी शुरुआत.
और चौथा द्वार जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, अकल्पनीय विचार, सीमित विश्वासों का नरक, लिमिटिंग बिलीव्स. ये उन सपनों और संभावनाओं के बारे में है जिन्हें हम सोचने तक से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो असंभव लगते हैं. जैसे
मैं कलाकार नहीं बन सकता, या मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, या मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता. हम खुद ही अपने पंख काट लेते हैं. यहां बेक कहती हैं कि कल्पना करो, उन रास्तों के बारे में सोचो जिन्हें आपने बंद कर दिए हैं. खुद को सपने देखने की इजाजत दो.
तो ये चार द्वार पार करने के बाद, यानी अपनी सच्चाई को पहचानने और महसूस करने के बाद, यात्रा पहुंचती है भाग थ्री, पर्गेटरी, शुद्धि लोक, चढ़ाई पर. यह अब एक्शन का दौर है. जो सच हमने अंदर खोजा है, उसे अब बाहरी दुनिया में जीना है, बदलाव लाना है. यह आसान नहीं होता.
हाँ, यही असली परीक्षा होती है. बिल्कुल. यहाँ कुछ कमाल के औजार मिलते हैं, जैसे पवित्र ना, सेक्रेड नो की शक्ति, अपनी ऊर्जा और सच्चाई को बचाने के लिए ना कहना सीखना.
ये बहुत जरूरी है.
हाँ, और ये भारत में तो और भी जरूरी है, जहाँ मना करना अक्सर बुरा माना जाता है, खासकर बड़ों को या रिश्तों में, है ना.
अपनी सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं तो आपके आसपास के लोग जो आपके पुराने रूप के आदि थे, वो असहज हो सकते हैं. उनकी प्रतिक्रिया से कैसे निपटना है बिना अपनी राह छोड़े, ये भी सीखना होता है.
सही बात.
और साथ ही अपना समूह, ट्राइब ढूंढना, यानी ऐसे लोग जो आपकी असलियत को पसंद करते हैं, आपको सहारा देते हैं, ना कि आपको बदलने की कोशिश करते हो.
हाँ, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना. और इसी शुद्धि लोक में माफी का भी अहम रोल है. दूसरों को माफ करना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, खुद को माफ करना.
खुद को माफ करना. हाँ,
उन सभी मौकों के लिए जब हमने डर के मारे या अज्ञानता में अपनी सच्चाई का गला घोटा, ये बोझ उतारना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए।
और फिर इस पूरी चढ़ाई के बाद आता है भाग चार, पैराडाइज, स्वर्ग, समग्रता की वापसी। ये कोई बादलों वाली जन्नत नहीं है,
नहीं नहीं,
बल्कि जीने का एक तरीका है। जब आप पूरी तरह अपनी सच्चाई में स्थित हो जाते हैं, तब जीवन कैसा महसूस होता है? सहज, प्रवाहमय, उद्देश्यपूर्ण।
हाँ, स्वर्ग की कुछ निशानियां हैं, जैसे ना करके करना, वो वे। ये ताओ फिलॉसफी से है कि जब आप पूरी तरह अलाइंड होते हैं तो काम अपने आप होते हैं, जोर नहीं लगाना पड़ता। जैसे कोई माहिर तैराक पानी में बहता है।
अच्छा, एफर्टलेस एक्शन।
बिल्कुल। फिर उद्देश्य का उभरना, आपको अपना पर्पस ढूंढना नहीं पड़ता, वो आपके सच जीने से खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये बड़ी राहत की बात है।
और साथ में आती है सहज रचनात्मकता और खुशी। वो सारी ऊर्जा जो पहले वो नकाब बनाए रखने में खर्च होती थी, अब आजाद है। आप ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा जिंदा दिल महसूस करते हैं। और एक और चीज जिसे बेग सिंक्रोनिसिटी या जादू कहती हैं।
सिंक्रोनिसिटी, हाँ।
जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो लगता है जैसे कायनात मदद कर रही है। सही लोग, सही मौके अचानक सामने आने लगते हैं। इसे आप संयोग कह सकते हैं, पर यह होता है।
वाह, ये यात्रा तो वाकई कमाल की है। अगर हम इस पूरी किताब की निचोड़ या मुख्य संदेशों को देखें तो कुछ बातें बार बार सामने आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने शुरू में कहा, अखंडता का मतलब समग्रता है, नैतिक होना नहीं।
हाँ।
ये बाहरी नियम मानने से ज्यादा अंदरूनी एकता की बात है। ये सोच हमारे समाज के वो अच्छा बच्चा या आदर्श बहू बनने के दबाव से कितनी अलग है।
बिल्कुल।
दूसरा बड़ा सबक, शरीर ही आपका असली गुरु है। दिमाग चकमा दे सकता है, समाज भरमा सकता है, पर आपकी बॉडी की फीलिंग्स, आपकी गट फीलिंग, वो सच बोलती है। हम अक्सर उसे अनसुना कर देते हैं ना,
बहुत ज्यादा।
पेट में होने वाली वो अजीब सी ऐंठन किसी मीटिंग से पहले, या किसी इंसान के पास सुकून महसूस होना, ये सब जरूरी संकेत हैं।
तीसरा जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, पीड़ा आपका दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है। चिंता, दुख, गुस्सा, ये संकेत है कि गाड़ी पटरी से उतर गई है। इन्हें दबाने या फौरन ठीक करने के बजाय रुककर सुनने की जरूरत है कि ये क्या कह रहे हैं। दर्द असल में आपको रास्ता दिखा रहा है, एक तरह से गाइड कर रहा है।
बिल्कुल।
और फिर वो आवश्यक स्व बनाम सामाजिक स्व का संघर्ष। हम सबके अंदर एक असली मैं होता है जो बचपन से होता है सहज स्वाभाविक, और एक वो मैं होता है जो हम दुनिया को दिखाने के लिए बनाते हैं, समाज, परिवार, दोस्तों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला।
हाँ, वो मुखौटा।
हाँ, इन दोनों के बीच का तनाव ही अक्सर हमारी बेचैनी का कारण होता है, खासकर हमारे यहाँ जहाँ परिवार और समाज का बहुत दबाव होता है।
हाँ, वो शर्मा जी के बेटे से तुलना वाला मामला। और एक और चीज जो बहुत प्रैक्टिकल लगी, छोटे छोटे सच बोलने की ताकत। अखंडता कोई एक दिन का बड़ा काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है।
सही।
हर छोटी बात में ईमानदार होना, चाहे वो ये कहना हो कि मुझे ये प्लान पसंद नहीं या मैं थक गई हूँ, यहीं से बदलाव शुरू होता है।
और आखिर में ये सुकून देने वाला विचार कि मकसद ढूंढना नहीं पड़ता, वो आपके होने से पैदा होता है। हमें लगता है हमें कोई बड़ा लक्ष्य खोजना है, बेग कहती है, नहीं, बस खुद बनो, अपनी सच्चाई जियो, मकसद अपने आप रास्ता बना लेगा।
इस किताब में ऐसी कई लाइनें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, कुछ पर बात करते हैं। जैसे ये अखंडता दुख का इलाज है, ये पूरी तरह से अविभाजित होने की अवस्था है। मतलब असली दवा बाहर नहीं, अंदर है। जब आप अंदर से एक होते हैं तो दुख झेलने की ताकत आ जाती है, और कई बार दुख कम भी हो जाता है।
और ये वाली तो सीधी चोट करती है। हर बार जब आप झूठ बोलते हैं तो आप अपने शरीर में जहर घोलते हैं, हर बार जब आप सच बोलते हैं तो आप खुद को शक्तिशाली दवा की खुराक देते हैं। यानी ईमानदारी सिर्फ नैतिक नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य का भी मामला है। ये सोचने वाली बात है,
है ना। एक और जो मुझे बहुत पसंद है, खासकर जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं, अपना सच्चा रास्ता खोजने का तरीका है खो जाना। मतलब भ्रमित होना या गलती करना कोई शर्म की बात नहीं, ये तो खोज की शुरुआत है। वो अंधेरा जंगल असल में जरूरी है।
और रिश्तों के लिए ये लाइन कमाल की है, आपकी शांति उनकी स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण है।
सीधी सी बात है, अपनी मन की शांति को दूसरों की हाँ या ना से ऊपर रखो। ये लोगों को खुश करने की आदत, पीपल प्लीजिंग, उससे निकलने में मदद करती है।
बहुत जरूरी है ये।
और अंत में थोड़ी कड़वी मगर सच्ची बात, सच्चाई आपको मुक्त करेगी। लेकिन पहले ये आपके जानने वाले लगभग सभी को नाराज कर देगी।
हाँ 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 ये तो है।
ये याद दिलाता है कि अपनी सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता, इसकी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, लोग शायद विरोध करें, लेकिन असली आजादी के लिए जरूरी हो सकता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में वो इंटेग्रिटी क्लेंस वाली बात, कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते समय एक पल रुककर अपने शरीर से पूछना, कैसा लग रहा है, शांति या तनाव?
बॉडी को सुनना।
हाँ, और जब मुश्किल भावनाएं आए तो उनसे भागने के बजाय शायद बस 5 मिनट उनके साथ बैठना, उन्हें महसूस करना, बस ऑब्जर्व करना।
और काम की जगह पर वो 4 द्वार वाला फ्रेमवर्क, वो बहुत काम आ सकता है। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी नौकरी या करियर के बारे में कोई सच नकार रहा हूँ, द्वार 1। क्या मैं तनाव को अंदर ही अंदर दबा रहा हूँ, द्वार 2। क्या मुझे अपनी बात कहने या सीमा तय करने में डर लगता है, द्वार 3। क्या मैं किसी बेहतर संभावना के बारे में सोचने से भी कतरा रहा हूँ, द्वार 4। और वो सैक्रेड नो, काम पर ना कहना सीखना, खासकर जब आप पर बोझ ज्यादा हो, ये बर्नआउट से बचा सकता है।
रिश्तों में भी वो सत्य का वर्ष वाली बात, छोटी छोटी चीजों में सच बोलने का अभ्यास। जैसे अगर दोस्त कहीं चलने को कहे और आपका मन ना हो तो बहाना बनाने की बजाय सच कहना। शुरू में मुश्किल लगेगा।
हाँ, लग सकता है,
पर धीरे धीरे रिश्ते ज्यादा गहरे और सच्चे बनेंगे, और ये पहचानने में मदद मिलेगी कि कौन से रिश्ते आपको ऊर्जा देते हैं और कौन से निचोड़ लेते हैं।
और क्रिएटिविटी के लिए वो 4th द्वार, अकल्पनीय विचार, उन दबे हुए शौकों या सपनों को फिर से टटोलना जिन्हें हमने प्रैक्टिकल नहीं कहकर छोड़ दिया था, शायद पेंटिंग, लिखना, गाना, कुछ भी। और मकसद के लिए बस अपनी सच्चाई के करीब आते जाना, ये भरोसा रखना कि रास्ता खुद ब खुद खुलेगा। मान लीजिए कोई अपनी बोरिंग जॉब से ना खुश है, पर डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहा, और उसे बचपन से गार्डनिंग का शौक था जिसे वो फालतू समझता है।
अच्छा, इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है वो ये कि हमारा दुख या हमारी बेचैनी वो हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की बुद्धिमत्ता है जो हमें जगाने की कोशिश कर रही है। ये हमें वापस सही रास्ते पर बुला रही है। ये नजरिया बहुत ताकत देता है।
और मुझे सबसे ज्यादा ये बात अच्छी लगी कि अखंडता का मतलब परफेक्ट होना या संत बनना नहीं है, इसका मतलब है बस खुद के प्रति ईमानदार और कोहेरेंट होना, मतलब जैसा अंदर वैसा बाहर। ये इसे ज्यादा मानवीय और करने लायक बनाता है। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि रोज का एक अभ्यास है, छोटे छोटे कदमों का सफर।
तो इस गहरी बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हमारा असली मकसद ढूंढने से नहीं बल्कि खुद को जीने से मिलता है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा सच है जिसे स्वीकार करके या बोलकर हम उस दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।